अब आप देखिए कि हमने वलीउल्लाह का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन वलीउल्लाह का लफ्ज़ सुनते ही जहन में एक अजीब व गरीब सा लफ्ज़ आता है और एक अजीबुल खिलकत किस्म की मखलूक आती है, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ना कोई बन सकता है और ये चंद लोग होते हैं और बस एक ख़ास गेटअप का नाम है। तो वलीउल्लाह होना ना किसी गेटअप का नाम है, ना कोई ख़ास हाल हुलिये का नाम है, ना ये लोग वीरानों में रहते हैं, ना कब्रों पर रहते हैं, ना मज़ारों की जीनत होते हैं। ये अमली ज़िंदगी में रहते हुए वलीउल्लाह बनते हैं। इसके लिए मेहनत और मुजाहदे की ज़रूरत है, जो हमने चंद पॉइंट देख लिए। और बाकी रह गई बात कि आज के दौर में जो लोगों को इन टर्म्स के अंदर उलझाया गया और उसके नतीजे में कुछ ऐसे ऐसे काम किए गए जिसको कहीं चिल्लाकशी का नाम दिया गया, कहीं कश्फ का नाम दिया गया, कहीं करामतों का नाम दिया गया, तो हम सब एक पाबंद दीन के मानने वाले हैं। हम जैसे नमाज में कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, इसी तरह हम दीन का कोई नया एडिशन इस तरह का नहीं खोल सकते कि अल्लाह के नबी के दौर में तो ऐसी कोई टर्म नहीं थी, लेकिन आज हम उसको कहीं विलायत के नाम पे, कहीं तसव्वुफ़ के नाम पे कायम कर सकें, क्योंकि इस लफ्ज़ वली के ऊपर तसव्वुफ़ के नाम पर किताबों की किताबें लिखी हुई हैं, इसके दर्जे हैं, मैंने खुद पढ़ी हैं और मैं हैरान हो गई। और मैंने सोचा कि ये वजह कि लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, पूरे दर्जे सलूक के दर्जे, बिल्कुल शरीयत वही है जो है, कोई बातें उसमें कोई ये नहीं कहते कि गाने सुनो तो वली बनोगे या तुम तसव्वुफ़ के पहले दर्जे पे और दूसरे पे, लेकिन वो काम भी इसमें किए और कराए जाते हैं कि जिसकी वजह से दीन के ऊपर बड़ी गहरी चोट आती है। सहाबा ने वो काम नहीं किए, बल्कि किसी ने अपने मुशाहदे भी बताए कि हमें वो इस तरीके से चिल्लाकशी कराते हैं, फिर हमारे रंग होते हैं। मैंने एक किताब में भी ये चीज़ पढ़ ली बाद में, शुरू में आपको हर चीज़ पीली दिखती है, जब दिखे तो समझे कि आप विलायत के पहले दर्जे पर आ गए हैं, कुछ दिन के बाद आपको हर चीज़ हरी दिखने लगती है, फिर कभी सुर्ख दिखती है, फिर कभी सफ़ेद दिखती है, और इस तरह हर रंग के साथ उन्होंने एक तसव्वुर कायम किया हुआ है। और इस तरह के मुशाहदे और वही बात है कि ऐसे लोगों की ज़ात में खो के रहने वाले बाज़ दफ़ा फिर उनको दुनिया में रहते हुए इस तरह का समझने लगते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास कोई ख़बरें देने वाले आए हैं। तो इस लफ्ज़ पर कोई गम ना करे, कोई इस पर गौर ना करे इस रंग में कि कोई नहीं बन सकता, आप भी बन सकते हैं। कुरान में तो ख़ुद अल्लाह ताला सूरत अल-फातिर में फ़रमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो डरते हैं उसके इल्म वाले ही उलमा, यानी इल्म है जो खशियत पैदा करता है। आप किसी को अगर अल्लाह का खौफ देना चाहते हैं, आप उसको इल्म दे दीजिए। इसी तरह एक और जगह आता है, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून इन अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अज़ाब से हमेशा डरते रहते हैं, क्योंकि इनके रब का अज़ाब ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे कोई बेफिक्र होकर बैठ जाए। खशियत है, अगर आप अल्लाह के वली हैं, अपने दिल की हालत चेक करें, गुनाह के वक्त में आपके दिल की क्या हालत होती है, कभी गुनाह हो जाए तो क्या करते हैं। अल्लाह के नबी बेगुनाह थे, मासूम अनिल खता थे, इसके बावजूद आप अक्सर हालात में मुस्तरफ दिखते थे। आप फरमाया करते थे कि मैं तुम सब में से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और उनके बाद के जो खुलफा थे, इसी तरह बाद में ताबईन, आइमा कराम, अल्लाह की खशियत और गिरियाजारी से इतना रोते थे, आखरत का खौफ इतना उनके ऊपर सवार था कि वो खुशियों के मौके पे परेशान होते थे। तो आइए अगली आयत को देखते हैं, तो फिर हमें कुछ और भी बातें इनकी समझ आएंगी कि एक औलिया अल्लाह क्या होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आता, कोई दुख नहीं आता, वो दुख प्रूफ होते हैं या क्या है। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि मैं आज को पीछे से दोबारा लूँगी, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, याद रखो जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं ना डर है उन पर और ना वो गमगीन होंगे। कौन होते हैं औलिया अल्लाह? अल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान से ही करना होता है, अल्लाह से ताल्लुक़, इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपको पीछे लिखाए गए, ईमान, अल्लाह के साथ ताल्लुक, तकर्रुब इलल्लाह, कहीं नवाफिल पढ़ रहे हैं, कहीं फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, कहीं मामलात का फ़िक्र है, वकानु यत्तकून, तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी के कामों से डरते हैं। देखिए कोई तीसरी चीज़ इसमें है, अगर कुरान से आप लेते कि औलिया अल्लाह ये होते हैं तो अल्लज़ीन आमनू वकानु यत्तकून के बाद लंबी लिस्ट होनी चाहिए थी ना, कुछ भी नहीं। अमूमन बहुत सारी नेकियों का और तस्करा होता है, लेकिन यहाँ इतना खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार किया तकवा बस, क्योंकि तकवा रासुल अम्र, हर काम का जो सिरा है ना वो तकवा है। तकवा आएगा तो सारे काम होंगे, जिक्र भी होगा, अल्लाह को याद करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर मन मने तरीके से जिक्र के हल्के कायम करना और सारे मिलके कोरस में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और अपने आप को तसव्वुर में ला रहे हैं। मुझे किसी एक ने बहुत पर्सनल मुशाहदा करवाया और उन्होंने बताया कि किसी जगह दर्स के नाम पे सुन के चली गई, किसी ने कहा कि यहाँ कोई दर्स तो वो कहते ही नहीं है, कुछ और ही कहते हैं, महफिल है या, तो कोई जाती थी, उन्होंने कहा तुम भी चलो, ये चली गई और सब लोग जमा थे, कुछ शायद मर्दों का भी मर्दों में होगा। फिर कहती कि जो साहब थे, जो भी हमारे उस वक्त इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा सारी लाइटें बंद कर दें, बंद कर दी। फिर सुनने वालों से सबसे कहा कि आप इमेजिन करें कि आप परिंदे हैं, बर्ड्स हैं। फिर कहती कि वो माहौल ही ऐसा बना होता है कि सब सोच रहे हैं परिंदे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप सब इमेजिन करें कि आप उड़ने लग गए, कह रहे सब इमेजिन करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब आप सोचें कि आप फिजा में हैं, आप उड़ रहे हैं और अब मदीना आ गए, अब आप मदीने में उतर रहे हैं, इमेजिन करें, अब आप समझें कि आपके सामने रोज़ा है और उसके बाद अल्लाह के नबी के साथ की कुछ बातें। कभी अल्लाह के नबी सहाबा ने कभी दीन के नाम पर ये कुछ सिखाया था? और लोग ऐसी महफिलों से उठ के कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह। कहती मैं चूंकि क्रिटिकली देख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, जो सारे लोग सर धुन रहे थे, हाँ हाँ ये लग रहा है, हाँ हाँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये कोई बात नहीं। इसी तरह एक किताब में मैंने पढ़ा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, जो आयत करीमे के नाम पर हम लोग बहुत सारा मारूफ है हमारे कल्चर में, तो उसके पढ़ने का तरीका लिखा हुआ था कि आप इमेजिन करें कमरे में बैठे अपने सामने एक बड़े से प्याले के अंदर पानी ले लें, फिर उसके साथ तस्बीह उसके अंदर भिगो दें और अपना हाथ पानी में डालें, फिर आप लाइट बंद करके इमेजिन करें कि आप मछली के पेट में हैं, फिर आप जब ये सोच लेंगे ना तो फिर पानी के अंदर जो तस्बीह उसके ऊपर फेरें और पढ़ते जाएं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। नहीं कानू यत्तकून, तक्वा अख्तियार करो, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें जो लोगों के नज़रों में, जो लोग इतने मारूफ होते हैं दरगाहें, कभी आप अंदर जाके हालात देखें, जिना के अड्डे, भंग और चर्स के अड्डे बन चुके होते हैं, कई जगह ऐसी हालात हो चुके होते हैं कि वो दीन तकवा तो क्या, वो इस्लाम की हदों से निकले होते हैं। अल्लाह ताला ने दो सिफात बयान करके आगे अब इनका इंजाम बता दिया, इनको खुशखबरियाँ दी जा रही हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में बुशरा है, खुशखबरियाँ हैं और आख़रत में भी हैं, यानी इनको दुनिया और आख़रत की खुशखबरियाँ मिलेंगी, दुनिया की खुशखबरियाँ और आख़रत की खुशखबरियाँ। ला तब्दील अली कलिमात इल्लाही, नहीं बदलती बातें अल्लाह की, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, बेशक ये कामयाबी है बहुत बड़ी। ऐसे लोग दुनिया और आखरत में कामयाब हो गए। यहाँ अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह या वलीउल्लाह जो होते हैं उनको जो कुछ मिलता है उसकी बात की गई, तो पहली चीज़ है इसमें दुनिया की खुशखबरियाँ, फिर है आखरत की खुशखबरियाँ। हम इन दोनों को अगर देखें तो एक बंदा जब तकवा के दर्जे पर जीता है, जब उसकी ज़िंदगी वाकई अल्लाह की दोस्ती वाली ज़िंदगी होती है, वो उस शख्स की सूरत इख्तियार कर चुका होता है कि जिसको देख कर अल्लाह याद आए, ना कि शैतान याद आए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनको देखो तो अल्लाह याद आता है, और वो असल में उनके तकवा पर होने की अलामत हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग आप देखें तो दुनिया में बिल्कुल शैतान के पैरोकार बने होते हैं, शैतान की बातों को ही लेके चल चला रहे होते हैं, तो फरमाया कि जिनका अल्लाह ताला दोस्त बन जाता है उनकी ज़िंदगी में दुनिया में क्या कामयाबियाँ होती हैं। नंबर एक क्या है कि दुनिया में उससे अल्लाह ताला कोई ऐसा काम ले लेता है जो दुनिया वालों की खैर का भी होता है और आखरत में उसको उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि बुशरा का लफ्ज़ जो है ना, ये बशर से है, और बशर कहते हैं खुशखबरी को, ऐसी खुशखबरी कि जिसको एक बंदा छुपाना भी चाहे खबर, लेकिन उसका असर उसके चेहरे पर दिखने लगे। फिर दूसरी चीज़ इसमें आती है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, वो कह के दुनिया में उनके लिए तारीफ़ें लिख दी जाती हैं, हर ज़ुबान पे उनकी तारीफ़ होती है। इसके अंदर वो मारूफ हदीस आप कोट कर सकते हैं कि जब अल्लाह ताला को किसी से मोहब्बत होती है तो जिब्राइल को कहते हैं कि आप इससे मोहब्बत करें, फिर जब जिब्राइल भी करने लगते हैं तो होते होते वो मोहब्बत ज़मीन और आसमान में फैला दी जाती है, तो अल्लाह ताला उनके लिए बुशरा रख देता है। फिर अगली बात क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये खुशखबरियाँ देते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तारीफ़ मिलती है बुशरा की। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बुशरा क्या है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह मोमिन को सच्चे ख्वाब देता है। मिसाल है कि किसी का ख्वाब सच्चा हो जाता है या किसी ने आज जो चीज़ देखी वो उसके साथ सच हो गई, तो इसकी फिर भी 100% आपके पास कोई दलील नहीं है कि ये अल्लाह का वली है या नाफरमान है। क्योंकि काफिर को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं और मोमिन को। सूरह यूसुफ़ में आप जाके पढ़ेंगे कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ था, तो वहीं पे उस मुल्क के काफिर बादशाह का ख्वाब भी बाद में सच्चा हो गया। ठीक है, तो ये किसी के साथ भी ये मामला हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता कि आते हैं, लेकिन अगर सच्चे ख्वाब आते हैं और एक इंसान मुत्तकी भी है तो इसकी दलील हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिल जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबूवत से पहले जो शुरू के दिन होते थे उसमें आपको सच्चे ख्वाब आने लग गए। फिर इससे क्या पता चलता है, एक और चीज़, और वो क्या है कि जो लोग इस तरह के काम करने लगते हैं अल्लाह ताला दुनिया में उनके दिल को खौफ से खाली कर देता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में गम आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों में ठहरती नहीं, क्योंकि देखिए ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बात पहले कर दी गई थी। अगर आप इसको भी उधर ही मिला लें, बुशरा लहुम फिर दुनिया और आखिरा के अंदर, कि जो अल्लाह का वली होता है ना उसके ऊपर गम आते हैं, दुख आते हैं दुनिया में, ये नहीं हो सकता कि उसको गम ना आए, उसके ऊपर कोई दुख ना आए, लेकिन ठहरते नहीं हैं, उसका कुछ बिगाड़ते नहीं है ये गम और दुख, काम उसका रुक नहीं जाता। नबी सल्लम के पास आप देखिए कितने मरहले आए ज़िंदगी में, मौतें भी हुई लोगों की, जंगों में शिकस्त भी होते होते बची, खैर भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपका दिल गम से खाली होता है। ये बड़ी अहम कैफियत है। आप सोचें कि अल्लाह का वली बन रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, अमल कर रही हूँ, अब कोई गम नहीं आएगा, कोई बीमार नहीं मैं होंगी, कभी मेरे बच्चे को चोट नहीं लगेगी, नहीं। आप अपने दिल को चेक करें, कुरान पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। शर्त क्या है कि आप हकीकत में उस कुरान के असर को अपने दिल पर ले रहे होंगे। अब उसकी कैफियत क्या है कि बड़े से बड़ा गम आ जाए, बिल्कुल इमरजेंसी हालात आ रही हों, आपका दिल मुतमईन होता है। आप इस चीज़ को महसूस करें आम हालात में, सब गाड़ी में बैठते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए, एकदम झटका लगा, अनयूजुअल किस्म की बात हो गई, गाड़ी में झटका लग गया, आगे कोई आ गया, ब्रेक लगानी पड़ी, उस इतने से झटके के बाद जो गाड़ी में 5-6-7 लोग बैठे होंगे उनके रवैये फ़र्क होते हैं, कुछ चीखना शुरू कर देंगे, कुछ चिल्लाना शुरू कर देंगे, कोई हाल दुहाल करेंगे, और कोई ऐसा भी होगा जब वो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेगा कि अल्लाह ने बचा लिया। ये कैफियत क्या है, झटका सबको लगा लेकिन हर बंदे ने अपनी विलायत के दर्जे पे उसको सहा। गम आते हैं, दुख आते हैं, मौतें होती हैं, लेकिन वलीउल्लाह जो होते हैं ना वो फिर सीना खूबी नहीं करते, वो बाल नहीं खोलते, वो अपने आप को कोसते नहीं हैं। तो इस वक्त मुझे तो जो चीज़ लगती है कि कुरान के इतने पारे पढ़ने के बाद आप सब खुद को खुद चेक करें। मुझे जो इब्तदाई दिनों का अपना बिल्कुल ज़िंदगी के आगाज़ के दिन याद आते हैं, तो मुझे इन आयात ने बहुत हरस दी थी। जब मैं कुरान की तरफ आती थी तो मैं अपने आप को चेक करती थी कि क्या वाकई अगर मुझे कोई मसला होता है तो मेरे दिल का क्या हाल है। कभी कभी तो मुझे ये अपने ऊपर गुमान होने लगता था कि मैं पागल हूँ, मेरी हिस कोई कम है, मुझे कोई बहुत गम नहीं लगता। बड़े से बड़े अनयूजुअल मरहले आ सकते हैं। जैसे मुझे किसी का वाकया याद आ गया जिससे आप इस आयत को अच्छा समझेंगे, कि किसी जगह थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि बहुत दौलतमंद थे और अपने इबादत में मसरूफ़ थे, और किसी ने आके कहा कि आपके कारोबार जो था वो ख़त्म हो गया, बकरियां मर गई हैं, आराम से बैठे रहे। फिर खबर बाद में आई जी आपका बेटे का इंतकाल हो गया, आराम से बैठे रहे। इस तरह की बातें करते रहे और बाद में जो भी मामला हुआ, तो बंदा हलचल नहीं मचाता। जो अल्लाह की विलायत है ना, ये बंदे को मुतहम्मिल इंसान बनाती है, बात बे बात आपे से बाहर नहीं हो जाते। जैसे आज मैं सोच रही थी आते हुए, ये आयतें तो मेरे जहन में उस वक्त सच्ची बातें नहीं थी, लेकिन मैं लोगों के रवैयों पे गौर कर रही थी कि लोग इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हैं ना, छोटी छोटी बात पे फैसले ले लेते हैं बातों के, कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना है। मिसाल है कि आप देखिए कि कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत आम हो गया ना, सेलफोन तो हाथ में होते हैं, पाकिस्तान के कार्ड्स हमने उसमें डाले होंगे, मैंने नहीं डाला हुआ वैसे, लेकिन अमूमन मैंने लोगों को देखा है फ़ौरन हाथ में करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ख़बर मिली, बेटा घर नहीं आया या उसके बारे में कोई ख़बर आ गई, फ़ौरन हाथ किधर गया, फ़ोन पे, अम्मी दुआ करना बच्चा नहीं मिल रहा, कुछ भी बात है, आप अम्मी को भी आपने परेशान कर दी, खुद भी कर लिया। 10 मिनट नहीं गुजरे आपको पता चल गया कि बच्चा खैरियत से, कोई मामला नहीं, तो वो अम्मी वहाँ परेशान है। अब हो सकता है आप फ़ोन करें तो पता चले अम्मी बीमार हो गई, या हो सकता है पता चले कि फ़ोन ही नहीं मिल रहा और वो वहाँ 2-4 घंटे परेशान रही। ये जितना हमारे दुनिया के असबाब हमारे हाथों में आ गए ना, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ टूट गया। अल्लाह के नबी का हाल क्या था कि जब कभी उनको कोई गम की खबर मिलती तो फ़ौरन वज़ू करते, नफिल पढ़ने शुरू होते। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक दफ़ा सफ़र में थे तो वहाँ उनको किसी ने खबर दी। इमेजिन करें, अल्लाह ना करें हम में से किसी को इतनी बुरी खबर किसी भी सफ़र में या किसी भी हाल में मिले, किसी ने इनको कहा कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। बड़े तहम्मुल अंदाज से घोड़े से उतरे, वज़ू किया और जायनमाज पे खड़े हो गए। सुनने वाले ने समझा कि शायद इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है, लगता है कि इतनी खबर सुन के कुछ भी नहीं हुआ। और जब नमाज पढ़ी तो उसमें आयत पढ़े थे, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। ठहराओ, सुकून, हम छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। गाड़ी स्ट्रक हो गई, हाइपर हो जाओ। देर हो गई, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। ये जो चुलबुलापन होता है ना, ये वलीउल्लाह की ज़िंदगी में नहीं आ सकता। पहाड़ आपके ऊपर से गुजर जाएं, आप वैसे ही फ्रेश दिखें, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट हो, हम मुतमईन हो। खाना नहीं पका, परेशान। शौहर की गुस्सा आ गया, परेशान। कपड़े इस्त्री नहीं हुए, परेशान। ये कोई बातें? ये सारी घबराहटें जब हम आखिरत के लिए ले लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी बुशरा ज़िंदगी में मिलेगी। अल्लाह दुनिया में जन्नत दिखाता है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में आप पढ़ के देखें कि उनको जेल में डाल दिया था, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जेल में थे। मैं सोचती हूँ कि ये मुहसिनीन के साथ लोगों का हाल होता है। आज हम उनके नाम लेके रहमतुल्लाह कहते हैं और लोगों ने उनको ज़िंदगी में क्या कहा। इमाम मालिक जेल में डाले गए, इमाम अबू हनीफा जेल में डाले गए। लोग अपने दौर में मोहसिनों की कदर नहीं करते, बाद में उनको हीरो बना के पूछते हैं और उनके नाम पे जहर लग रहे। तो किसी ने उनको कहा कि इब्ने तैमिया सुनाओ क्या गुजरा, जेल के दिन कैसे थे? कहने लगे, मेरी जन्नत मेरे दिल के अंदर है, मुझे तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, मैं तो बड़ा मुतमईन रहा। हज़रत यूसुफ का किस्सा हम पढ़ेंगे अगली सूरतों में कि जेल में रहे इतने साल मुतमईन, भाइयों ने कुएं में डाल दिया मुतमईन। हम छोटी सी छोटी बातों पे क्यों परेशान होते हैं? यहाँ हम अपने आप से पूछें, मुतमईन एक लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आया, परेशान। आधा नंबर आगे पीछे हो गया, परेशान। असाइनमेंट में एक चीज़ नहीं, परेशान। क्या ये होते हैं अल्लाह वाले? क्या वलीउल्लाह होने वाली ये अलामत है? और गम पाल लिया अपने कुरान के नाम के साथ? नहीं, सारे गम एक तरफ इस खुशकिस्मती को महसूस करें कि अल्लाह ने आपको किसके लिए चुना, अल्लाह ने आपको क्या नेमत दी। ये कोई बातें? मेरी बारी नहीं, उसकी बारी। ये आपकी बातें नहीं कर रही, ये अमूमन होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। मैं तो जो बात करती हूँ ना, यकीन करें, इस क्लासरूम के लिए नहीं करती, लेकिन यकीन करें कि ये सारी दुनिया की जगह में लोगों का जो इस वक्त यानी मसला है, वो क्या कि वो छोटी 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 बातों पर परेशान हो जाते हैं। ये नहीं वो नहीं, खाना पकाने बैठे टमाटर नहीं परेशान हो गए, ये कुछ परेशानी है? आप यकीन करें, आप अपने हालात को मुतमईन करके बैठे, घर में ही आपको अल्टरनेट दिखेगा। जिस चीज़ पे हमारा दिल खौफ में उछलने लगता है ना, अगर हम अपने आप को पीसफुल रखें तो सामने उसका हल भी होता है। अल्लाह के नबी की वो हदीस इतनी पसंद है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी अल्लाह ने दवा ना दी हो। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे मसाइल का हल ना हो? आप खाना पका रहे हैं, अब इसी बात बोलने लगती हैं, फिर शौहर को फ़ोन करिए, आप किधर हैं किधर हैं, ठहरे ठहरे अभी ना आइए, वो दही चाहिए। अल्लाह के बंदो, सोचो, गौर करो। यानी जो मैं सच्ची बात है, थोड़ा सा दीन समझी हो ना, मैं समझी हूँ कि दीन इत्मीनान का नाम है। पेट भर है तो भी मुतमईन, पेट खाली है तो भी मुतमईन, आप खुश हैं तो भी। ऐसे बंदे को कौन बताइए डिफ़ीट करेगा, जो थोड़े पे भी राज़ी, ज़्यादा पे भी राज़ी, कभी अच्छा कभी बुरा, तो क्या हुआ? वरना लोग करोड़ों लाखों ले के कमा के भी खुशी नहीं पा सके, हाइपर हो गए। इत्मीनान, सुकून, अल्लाह तेरे साथ मामला, तू मुझसे राज़ी रहना। फिर बंदा ये जो ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनकी एक और कैफियत भी देख लें, हर वक्त इस खौफ में कि लोगों का खौफ, लोग क्या कहेंगे, ये खौफ है। सास क्या कहेगी, ये खौफ है। नंद क्या कहेगी, ये खौफ है। बेटी की सास क्या कहेगी, पहले अपनी सास से डरते हैं फिर बेटी की सास से डरते हैं। और मैंने तो बाज़ को फिर नवासियों की सासों से भी डरते देखा। मैं सोचती हूँ ये औरत 70 साल की होने वाली है, अभी तक इसको इसके दिल से इंसानों का खौफ नहीं निकला। वो सब दादी अम्मा बना देते हैं उनको कि आप सारे मामलात को टैकल करें, तो हरकतें बच्ची की सास, बच्ची की सास, बच्ची बच्ची बच्ची, कहाँ है तकवा, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हु केयर्स, कोई नाराज़ होता है पहले देखो, अल्लाह तो नहीं नाराज़। शौहर नहीं बात कर रहा, शौहर को मैं पसंद नहीं, छोड़ो, मारो गोली इस बात को, कौन सी बड़ी बात है। ये देखो अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं, शौहर मुझसे बात नहीं करता, छोड़ो, देखो अल्लाह से करता है कि नहीं करता। यकीन करें कि ये आयात अगर हमें समझ आ जाए ना, तो कम अज़ कम हमारे दिल की दुनिया में तो अमन चैन आ जाए, पीस। आप कहते हैं बड़ा फियर है दुनिया में, बड़ा खौफ है, जंगों का ख़तरा, उसका ख़तरा, पाकिस्तान में खौफ, उधर खौफ, मुझे तो कहीं नहीं दिखता खौफ। ये खौफ हमारे अंदर है, हम ठीक हो जाए ना सब चीज़ें ठीक होंगी। और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनको बड़ी ठहराव वाली बीवियाँ मिल जाती हैं। औरत के दो बेटे हो ना, दो बहुएँ हैं, एक बेटे की ज़िंदगी में इत्मीनान क्यों है कि उसकी बीवी हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेती है, शौहर को तब बताती है जब हो जाती है, ख़त्म हो गई, मसला हल हो गया। और दूसरी जो है वो हर वक्त उसकी जान ही निकाली होती है कि पता नहीं इमरजेंसी लगी हुई है। मुझे याद आ गया ये बात कहते हुए उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या, कि बीमार था घर में, शौहर काम पे गए, پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ امیجن کریں ذرا، اس کو نہلایا دھولایا کفنایا اور کمرے میں رکھ دیا، شام کے وقت میاں آئے، کیونکہ اس وقت نہ سیل فون تھے نہ پیجر تھے، اب تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے نا بات، پہلے نہیں پھیلتی تھی ایسی خبریں. خیر شوہر آئے، انہوں نے آتے آتن جیسے مرد پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے، کہنے لگی پہلے سے بہت اچھا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا کیونکہ بچہ تھا، اسکول تھا، دنیا میں تکلیف میں تھا، وہاں جا کے اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں گی. کہا اچھا کدھر کا سو رہا ہے؟ کہا اچھا لاؤ کھانا دو. کھانا دیا، میاں سے کھانا کھلایا، ان کو پلایا، پھر سوئیں، پھر ان کی خواہش پوری کی. جب دیکھا شوہر کی جسمانی وہ ختم ہو گئی، تھکن دور ہو گئی، سارے دن کی تھکن دور ہوئی، تو صبح کہا کہ آپ ایک بات تو بتائیں، اگر کوئی آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھے اور جب واپس لینے آئے تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ کہا میں تو شکر کروں گا، امانت کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، سچی بات ہے. سیل فون ہی کیوں نہ لے لیں ایک منٹ یوز کرنے کے لیے، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اب خیریت سے واپس پہنچ جائے اس تک، کوئی برتن ہی کیوں نہ ہو. کہنے لگے کہ میں تو بہت خوش ہوں گا. کہا اچھا پھر خوش ہو جائیے کہ جو امانت اللہ نے رکھوائی تھی وہ واپس لے لی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا. اب انہوں نے تو جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ سر پیٹ لیا ہوگا کہ یہ کیسی عورت ہے. ان کو لگا میں نے گناہ کیا، گھر میں میت پڑی ہوئی تھی اور میں اپنی خواہشات میں تھا، اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے بیوی کی خبر سنا دی. آپ نے کہا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ آج کی رات میں اللہ نے تمہارے لیے ایک اور بچے کی امید رکھ دی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی آپ کی زندگی میں غم کا پہاڑ آ جائے، صرف ایک دفعہ رب کے اوپر حاضر ہیں، دکھ کی چوٹ غم کی چوٹ کے وقت الحمدللہ جو اللہ نے کی ہے اس میں غلطی نہیں ہوگی، اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ میری ماں سے 70 گنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس میں خیر ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے. جو اس دکھ کے لمحے میں کہے گا نا الحمدللہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ایسے زخم سیئے گا جیسے کبھی نشان ہی نہیں ہے، ڈاکٹر سیتے ہیں اس کا نشان رہتا ہے، اللہ جب زخم بھرتا ہے گھاؤ بھر دیتا ہے، اللہ تو کٹے ہوئے جسموں کو جوڑ دیتا ہے دوبارہ، لیکن ہم اللہ کو پہچانے نہیں، ہماری نظریں ان لوگوں پہ ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو صحت ملے گی، ہم کہتے ہیں نہیں جب تک یہ نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اسباب اللہ نے کہا استعمال کرو، لیکن آپ ساری دنیا کی دولت لے کے، ساری آسائشیں لے کر، آپ کھا پی کے اچھے کھانے اگر پھر بھی خوش نہیں ہیں تو سمجھیں کہ پھر کچھ رانگ ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اب اگر اس بشرا کو دیکھوں تو ایک اور ذہن میں اس کا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کے دل خود جم جاتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ان کی اولادوں کی خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں کسی رنگ میں بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے 70, 80, 90 سال کے ہو رہے ہیں، بچے ہی نہیں ہیں. حضرت زکریہ بچے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے اس عمر تک بھی ان کو میں محروم نہیں رکھا. کہا ولم اکم بھی دعائی کا رب بھی شقیہ، اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم رہوں؟ لوگوں کو کیوں بتاؤں میں چپکے چپکے مانگ رہا ہوں کہ ربی حب لی من ذریت طیبہ، اللہ نے دے دیا، اللہ مان نہیں توڑتا ایسے لوگوں کی. اور اسی طرح آپ دیکھیے بگڑی اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بگڑی ہوئی تھی، اب آپ سوچیے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، بچہ بیکار کافروں کے ساتھ مل گیا، اللہ کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کشتی بنائیے، پڑھیں گے اگلی سورت خود میں پورا واقعہ آ رہا ہے حضرت نوح کے کشتی بنانے کا. کہتے نہیں اللہ میرا دل غم میں پڑا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، میرا نہیں دل سوج رہا، آپ جائیں کسی اور کو کہیں بنا دے، میں اپنے بچے کا غم منا رہا ہوں. بیٹھے منا رہے ہوتے غم، کام کر رہے، خود اپنے ہاتھ سے بڈھا نو جو ہے وہ لکڑیاں ٹھوک ٹھوک کے کشتی بنا رہا ہے، اور جب اسی کشتی میں بیٹے کو بلایا وہ نہیں آیا، دل میں تڑپ بھی تھی لیکن غم نہیں تھا. اولادیں بگڑتی ہیں جائیں، پھر اللہ کا مال ہے. دیکھیں اللہ سے زیادہ مجھے اپنے بچے سے پیار نہیں ہو سکتا، اللہ اتنی مخلوق کو کچرے کی طرح آگ میں ڈالے گا نا کل تو ڈال دے پھر، نہیں سنتا نہ سنے میں اپنی آخرت تو بناؤں، یہ نہیں سنتی نہ سنے اس کی وجہ سے میری نماز کیوں خراب ہے. یقین کریں ہمارا اللہ سے تعلق اگر بن جائے تو ہم اپنی اولادوں کی خوشیوں میں نہ بہکیں کہ پہلے بیٹے کی شادی، آخری بیٹے کی شادی، اکلوتے بیٹے کی شادی، اور نہ ان کے غموں پہ ہماری چیخیں نکل جائیں کہ ایک ہی بچہ تھا دنیا سے چلا گیا، چوٹ پڑتی ہے. ایک ہی بیٹا ہوتا چلا جاتا ہے دنیا سے، ماں باپ کے سامنے جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. 20 مثالیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ جو بچہ ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے نا محبت کے لیے اسی کا غم آتا ہے. جن بچوں کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے آپ کو ان کے اتنے غم بھی نہیں ملتے. یہ اولادیں آنکھوں کے آنسو بنتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے بچے نافرمان ہو گئے، چھوڑو مارو گولی، اپنی فکر کرو کہ کیا تمہارے ساتھ، کہ آج آنکھیں بند ہو کسی کو نہیں یاد رہے گا کہ بچے فرما بردار تھے یا غم کرنے والے تھے. یہ سزا ملتی ہے ہمیں, یہ جو ڈپریشن اور یہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں اور دل مسوسا رہنا, الجھا رہنا, کھا کے بھی ایسے اور نہ کھا کے بھی ایسے, اور دولت والے کا بھی وہی حال ہے, بے دولت والے کا بھی, شوہر والیاں بھی رو رہی ہیں, بے شوہر والی بھی رو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے, ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے. ہے مال تو بھی حریص ہیں, نہیں ہے تو بھی بھوکے ہیں. اس کا بالکل اپوزٹ کریں. اس آیت سے آگے جائیں نہ جب تک آپ خود کو موقع نہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں ٹھہرانا ہے. زندگی کے اندر آپ کو دنیا کی خوشخبریاں نہیں آخرت کی ملیں گی. یہ جو ہے نا فی الآخرتی, یہ تو آخرت میں آئے گی. دنیا کی بشرا میں ایک اور بشرا نوٹ کریں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پکار لگتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃ. اے اطمینان والی روح, چل اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے. فرشتے پھر ایسے لوگوں کو مرحبا کہتے ہیں, خوشخبریاں سناتے ہیں. جب ایک انسان کی زندگی کا سفینہ موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پکار لگتی ہے مرحبا, آؤ تم آؤ میری طرف, یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اللہ کی رضا کا تاج اس کے سر پہ جاتا ہے. پھر مادی لذتوں میں مگن رہنے والے اور دنیا کی فانی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے والے, ان کو یہ خوشخبریاں نہیں ملتی کہ موت کے وقت فرشتے ان کو لینے کے لیے آ جائیں. اللہ موت تک ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ غارِ ثور میں تو بھی مطمئن ہے, وہ غارِ حرا میں ہے تو بھی مطمئن ہے, وہ بدر کے میدان میں تو بھی خوشخبری ہیں. اللہ کے نبی, ایک دم خوشی کی لہر دوری آپ کے دل میں اور آپ باہر آئے اور آپ نے کہا ان قریب یہ جتھا شکست پا جائے گا, اور مسلمان جیت گئے. ایسے جیتے کہ 313 نے 1000 کو ختم کر کے رکھ دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر الجھن میں نہ ڈال کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور وفی الآخرتی, آخرت کی خوشخبریاں لمبی لسٹ ہے. پورا قرآن اور پورا حدیث کا نصاب جو ہے, یہ ولی اللہ اور اولیاء کرام کو جو جنتوں میں نعمتیں ملی ہیں نا, اس سے بھرا ہوا ہے. جا کے ساری آیتیں جمع کر کے لکھ لیں, یہ سب کچھ ان کو ملے گا. آپ کہتے ہیں اچھا, یہ اوکے ہو سکتا ہے. کہا نہیں, لا تبدیل علی کلمات اللہ, اللہ کی بات نہیں بدلتی. کہہ دیا تو کہہ دیا, ہو کے رہے گا. کون ہے جو اللہ کی باتوں کو بدلے؟ اللہ نے جتنے وعدے اپنے ولیوں سے کیے, جن انعامات کا وعدہ کیا, عنایات اور نوازشوں کی بشارتیں کی, وہ قطعی ہیں, فائنل, نو رد و بدل, کچھ نہیں ہوگا, یہ سب ملے گا. اور ایسے لوگوں کو یہ خوشخبریاں ملتی تھیں, تبھی تو وہ پھر دنیا میں جنت کے خواب دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. کیوں صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے جاتے تھے میدان جنگ میں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دنیا کی لذتیں پا چکے ہوتے تھے, اطاعت کی, فرما برداری کی, ولایت کی, اب جنت کی لینا چاہتے تھے. جیسے آپ کسی کے کہنے پہ ایک چیز چکھے تو آپ کو مزہ آئے نا, تو آپ کہتے ہیں آپ کوئی نئی چیز بھی ہوگی تو دکھائیے گا, آپ کے ہاتھ کی چیز اچھی ہوتی ہے. جو دنیا میں عبادت کی لذت چکھ چکا ہوتا ہے, اطاعت کا مزہ, سرور, اللہ کے ذکر, اللہ کی محبت کو دنیا میں دیکھتا ہے, بوجھ نہیں ہماری بندی نمازیں. بندے مومن کی جنت کہاں ہوتی ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں, فن پلیکس میں نہیں, اس کی جنت اس کی عبادتوں میں ہوتی ہے. لوگوں کو روزہ چھوڑ کے مزہ آتا ہے, اس کو روزہ رکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. لوگ نماز چھوڑ کے فن لینا چاہتے ہیں, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کب گیٹ کھلے اور میں ٹکٹ لے کے اندر جا کے بیٹھوں اس ہال میں کہ مجھے یہاں فن ملتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ اس عبادت کو میری دل کی ٹھنڈک بنا دے, یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جو قرتوانی فصلات اوکھما قال رسول اللہ, ہم کہتے ہیں ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ بھی کہہ سکتے تھے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک, رقیہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں, وہ محبت اپنی جگہ, لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اللہ کی بات کو سننے کے لیے یوں تیار ہوتے ہیں وہ لوگ, جب کہا سنو اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پھر یہاں حضرت ابراہیم کی بات یاد آ گئی کہ جب آگ میں پھینکے گئے وہ دن کیا تھے؟ کہتے ہیں میری زندگی کے سب سے بہترین وہ دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے. کیوں؟ اللہ کے راستے کی آگ. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا. फरिश्ते आके खबरें दे रहे होते हैं कि आपको इस आग के बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है। हज़रत यूसुफ कुएं में फेंके गए और वहाँ उनके वही आती है, हम पढ़ेंगे आगे सूरत में इंशाल्लाह। जेल में गए, वहाँ वही आ रही है। जितना बड़ा गम होता है, सदमा आता है, उतनी बड़ी खुशखबरी आने लगती है। और ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है कामयाबी, इसकी कोशिश करो। ये कामयाबी कहाँ से मिलती है? ये दुनिया की जॉब से नहीं मिलती, ये दुनिया की औलादों से भी नहीं मिलती, ये मिलती है जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए। अब आप इमेजिन करें, अल्लाह के नबी तबलीग का काम कर रहे थे, लोग तबलीग वालों के साथ बज़ाहर तो लग रहा होता है, आज के दौर में तो हम जैसे लोग हैं ऐसे हमारी तारीफ़ें भी बढ़ी हैं और हमारी इज़्ज़तें भी बढ़ी हैं, लेकिन नबियों के रास्तों में तो उस वक़्त के जो मुशरिक थे उन्होंने तो बहुत सारे कांटे फैलाए। सच्चे मोमिन मान रहे होते हैं, उनको अच्छा लग रहा होता है वो काम, दूसरों को नहीं लगता। क्योंकि आप सोचेंगे कि अच्छा अल्लाह के नबी के साथ लोग ऐसे करते थे, नहीं, आपके मुखलिस सहाबा नहीं थे ऐसे, जो आपके पास आ जाते थे वो ऐसे नहीं थे, लेकिन दूसरों के लिए आप एक कांटा थे। तो अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्लियाँ देते हैं कि वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, आपको इनकी बातें गमज़दा ना करें। कौन सी बातें? दिन रात जो इजाफा हो रहा है उनकी तकलीफ़ों में, हर मौके पे इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें, उसके ख़िलाफ़ बातें, ये बातें वो बातें करते थे। तो कहा आप इनकी बातों को बस सुने और दूसरे कान से निकाल दें, मत गौर करें। ये इस काबिल भी नहीं है कि आप उनके बारे में गम करके अपने काम को पीछे कर दें, मकसद से पीछे नहीं हटना। अब ये खौफ आता है लोगों की बातों से कि बेइज्जती हो जाएगी, मेरा बुरा नाम हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, अपने लफ्ज़ों में कह लें। आज भी तो आप देखिए कि कौन है जो वलीउल्लाह नहीं बनना चाहता, मुझे ये बताएं, कौन है जो मुत्तकी नहीं बनना चाहता? हर एक बनना चाहता है, लेकिन गम क्या होता है? इज्जत कम हो जाएगी, सर पे दुपट्टा लेंगे फिरेंगे और उतार के फिरेंगे तो इज्जत बेइज्जती का मामला है। अल्लाह कह रहे हैं इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की है। हुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने वाला और हर चीज़ जानने वाला है। इज्जत लोगों के हाथ में थोड़ी है, कौन है जो इज्जत का मालिक है? अल अज़ीज़, वो कादिर है, इज्जत उसकी है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, लोग आपको इस्लाम के बारे में, कुरान के नाम से, कुरान पे अमल करने से, इसके पढ़ने पे पढ़ाने पे छोटा समझते हैं, समझने दो, जिसका बर्तन जितना है उसमें उतनी चीज़ समाएगा ना। अब उनकी अकल खोपड़ी इतनी छोटी है, उनको क्या पता कुरान पढ़ने वाले कितने अजीम हो जाते हैं, अमल करने वाले कितने बड़े बन जाते हैं, वलीउल्लाह कितने बड़े बन जाते हैं। वो तो उन लोगों को इस तरीके से देख रहे होते हैं ना कि शायद ये बेकार लोग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि अल्लाह के लिए दोस्तियां करने वाले आपस में कितने खुश होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत मुख्तलिफ तरीक़ों से आने लगती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों की बातों पे फिर गम ना खाएं। आप नोट करें कि इस आयत की बात पीछे वाली आयत से कितना गहरा रब्त रखती है कि जब हम कुरान की तरफ आते हैं, या आप में से कोई जो पहली दफ़ा अब इस वक्त कुरान से जुड़ रहा है शौरी तौर पर, तो हो सकता है कि उसको फ़ील हो रहा हो कि अब मेरी वो इज़्ज़त नहीं रही दोस्तों में, पहले मुझे हर जगह कॉल करते थे, अब बुलाते भी नहीं, अब तो मुझसे छुपाने लग गए। तो ऐसे मौक़ों पे जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, उनको अल्लाह के नबी की एक हदीस याद रखनी चाहिए। यहाँ आपको उस आयत और इस दोनों के बीच में ये भी सुना देती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कहते हैं कि सवाल किया गया अल्लाह के नबी से कि इस आयत में औलिया अल्लाह से कौन लोग मुराद हैं जो पीछे गुजरी। आपने फरमाया, वो लोग जो खालिस अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, कोई दुनियावी गरज दरमियान में नहीं होती। अब आप सोचिए ज़रा, ये कौन लोग हैं जिनका तस्करा पीछे गुजर गया? यहाँ इज़्ज़त की बात करके उसके साथ क्यों जोड़ दिया कि कल जो बहुत सारे जमघट्टे थे ना तुम्हारे इर्द गिर्द, सोचो वो कौन थे। देखिए यहाँ थोड़ी सी बात ये भी कर लूँ कि मेयार कितने बदलते हैं। कभी आप सोचिए कि शौरी तौर पे कुरान के सफ़र से पहले, यानी कुरान एक मीन बनता है, वरना तो कई लोग इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फितरत की रहनुमाई पे ही बहुत ज़्यादा दीनदार होते हैं। आप आम लोगों के हालात देख लें, कितने लोग हैं जो खाना पकाते हैं, दावत करते हैं। मिसाल है, हमारे घरों में दावतें पकती ही रहती हैं ना, अमूमन 40-50 लोग। कितनी ख़वातीन हैं जो सुबह से शाम, क्या बल्कि एक एक हफ़्ता पहले से पकाने लग जाती हैं। उनके जहन में कभी एक बार भी ख्याल आए कि मेरा खाना खाने के बाद लोग करेंगे क्या? इस खाने को खिलाकर मुझे इनसे मिल क्या रहा है? चंद तारीफ़ी जुमले, चंद बातें, दोस्ती रिश्तेदारी, और कितने हैं जो अब ये सोचें कि ये जो खाने आ रहे हैं क्या मेरा खाना खाकर बाद में ये नमाज भी पढ़ेंगे कि नहीं, ये सिगरेट तो नहीं पीनी शुरू हो जाएंगे, ये कोई गंदी चीज़ें तो नहीं देखनी शुरू हो जाएंगे, क्या सोच बदली कि ना बदली। तो वलीउल्लाह जो होते हैं ना फिर उनकी दोस्तियों के रुख बदलने लगते हैं, वो अपने खानों के रुख जो हैं वो ऐसे लोगों की तरफ नहीं खोलते कि जो खा के और ना शुक्रिया बोलें या तारीफ़ें करें लेकिन नमाज़ पढ़े बगैर सो जाएं, वो कहते हैं मैं क्यों करूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स ने पूछा कि कोई शख्स ऐसा होता है और लोग उससे बग़ैर किसी गरज के मोहब्बत करने लगें और उसको अच्छा समझने लगें तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया तिल का आजिलुल बुशरा लिल मोमिन, कि ये मोमिन के लिए नक निशानी है। वहाँ भी चूँकि लफ्ज़ बुशरा का आया तो मैंने कहा आपको रिलेशन समझ आ जाएगा, यानी बाज़ दफ़ा कोई इंसान कोई काम करता है इसलिए से नहीं करता कि लोग उसकी तारीफ़ करें, लेकिन उसकी तारीफ़ होने लगती है या लोगों में वो ख़बर फैल जाती है, तो कहा कि ये उसके लिए एक आम खुशखबरी है। फिर एक और रिवायत है तबरानी में इब्ने उमर से, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह को ना मौत के वक्त कोई वहशत होगी ना कब्र में और ना कब्र से उठने के वक्त, गोया मेरी आंखें इस वक्त का हाल देख रही हैं जब ये लोग अपनी कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए और ये कहते हुए उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। ये सूरह फातिर की आयत है, इंशाल्लाह वहाँ हम इसकी डिटेल देखेंगे कि शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा गम दूर कर दिया। तो अल्लाह ताला आपके भी सारे गम दूर कर दे और उन सारी चीज़ों को हमारे दिलों के अंदर जमा दे जिससे हमारी दुनिया और आखिरत जो है खूबसूरत होने लगे।